हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध नवा अध्याय श्लोक संख्या 44। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हमने देखा किस प्रकार भीष्म देव अपने मन कर्म और वचन को भगवान में समर्पित करके भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते करते, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए भगवान की नित्य लीला में आविष्ट हो गए। यानी ये शरीर छोड़कर पार्थ सारथी को प्राप्त हो गए सदा के लिए, अर्जुन के सारथी को पा गए। तो उसके बाद आज सूत गोस्वामी बता रहे हैं श्लोक नंबर 44 में। सूत गोस्वामी कहते हैं, संपद्यमानमाख्याय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासीव दिनात्यये। संपद्यमानमाख्याय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले, सर्वे बुभूवस्तु ते तुष्णीं वयासीव दिनात्यये सम्पद्यमानमाख्याय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कलीं सर्वे बुभुवस्ते तुष्णीं वयासीव दिनात्यये। तो जब भीष्म पितामह ने कृष्ण एवं, जैसे सूत गोस्वामी ने पहले बताया, कृष्ण एवं भगवती मनोवादृश्य वित्त भी आत्मन्यात्मानवेश सोंत श्वास उपारमत के अंतिम सांस जो है वो खींच लिया भगवान को निहारते हुए। तो जब ऋषियों ने देखा कि भीष्म पितामह संपद्यमानम आख्याय, संपद्यमानम मतलब वो लीन हो गए भगवान में, यानी परम भीष्म ब्रह्मणि निष्कले पर ब्रह्म की नित्य लीला में भीष्म पितामह प्रविष्ट हो गए और उनमें लीन हो गए। सर्वे भूभुवस्ते तूष्णीम, सर्वे यानी कि जो सारे उपस्थित सभी लोग थे वहां पर, वे सब ना तूष्णीम का मतलब होता है बिल्कुल चुप होना, शांत हो जाना, एकदम साइलेंस हो गए। इतना वहां पर सब लोग ऋषि थे और उनकी बात भी सुन रहे थे, और जब हम कोई बात सुनते हैं तो बाद में कैसे बात उसके विषय में भी करते हैं, तो ऐसी थोड़ी बातचीत भी चल रही थी उनके बीच में। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए तो सर्वे भूभुवस्ते तूष्णीम, वो सब मौन हो गए। किस प्रकार मौन हो गए? वयासीव दीनात्य, वयासीव यानी पक्षियों की तरह। पक्षी कब मौन होते हैं जानते हैं? दिनात्यये मतलब दिन के समाप्त होने पर। जैसे ही सुबह होती है तो सारे पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, इधर उधर फड़फड़ाते रहते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं। जैसे ही दिनात्यये यानी दिन का अंत होता है, संध्या होती है, तो सब पक्षी जो हैं वो संध्या होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों की ओर चले जाते हैं और एकदम साइलेंस हो जाते हैं, आवाज नहीं निकालते। फिर पता नहीं चलता कि पक्षी हैं, क्योंकि पहले सारे दिन में पक्षियों की आवाजें होती है, लेकिन संध्या के बाद पक्षी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं सर्वे भूभुवस्ते तूष्णीम वयासीव दिनात्य। अनुवाद देखिए, यह जानकर कि भीष्म देव अनंत ब्रह्म के में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह से मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ही समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जैसा कि हमारे श्लोक में पहला लफ्ज है संपद्यमानम आख्याय, लीन हो जाना, यानी किस में? ब्रह्मणि निष्कले, पर ब्रह्म में लीन होना। उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनंत पर ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। आवास कहते हैं वास्तविक स्वरूप। अब देखो, हम लोग हर कार्य, आत्मा को कोई भी कार्य करने के लिए एक स्वरूप चाहिए होता है। इस संसार में भी हमें इस भौतिक सृष्टि के अनुसार ये पंचभूत का शरीर धारण करके ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के आध्यात्मिक लोक में जाते हैं तो वहाँ पर भगवत सेवा करने के लिए भी हमें एक वहाँ के प्रकृति के अनुसार, भगवान की जो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है उसके अनुसार हमें एक आवास की आवश्यकता होती है, एक स्वरूप की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसी के विषय में बता रहे हैं कि अनंत पर ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है जीव के मूल आवास में प्रविष्ट होना। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से संबंधित है। हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो स्वामी है और हम सब सेवक हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने पुर्जों से संचालित होती है। अत्यंत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि मशीन जो है वो पूरे पुर्जों की तरह से किस तरह संचालित होती है, उसी तरह सारे जीव जो हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। अब वैसे जब मशीन में लगा हुआ होता है वो पुर्जा, तो उसकी बहुत अहमियत होती है क्योंकि वो मशीन में लगा हुआ है। लेकिन अगर मशीन में से उसको निकाल के फेंक दिया जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार जीव की तभी तक वैल्यू है, तभी तक उसका वास्तविक अर्थ है जब वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग जीव का कोई भी, भगवान का कोई भी अंश जो है वो व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे परम पूर्ण के पृथक पृथक अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते। ये बात बहुत ही विशेष बात है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो भगवान के पृथक पृथक अंग हैं। यानी पृथक का क्या मतलब होता है कि जिनके बगैर, जिनके ना होने से वास्तविक मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ अंश ऐसे होते हैं जो अगर मशीन के साथ लगे हुए होते हैं तो वो सूट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लगाते तो उससे मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चल रही होती। जैसे कोई ढक्कन होता है किसी मशीन का, जैसे पेन, अगर हम लोग पेन लें तो उसका ढक्कन है, उसके ऊपर कोई स्टोन लगा हुआ है या कोई बटन लगा हुआ है या कुछ इस तरह की कोई रिंग लगी हुई है, कुछ भी है, तो वो उससे पृथक है। अगर वो निकल भी जाएगी तो उससे मशीन को, पेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारी भौतिक जगत में क्या है कि उसकी सुंदरता में कमी पड़ जाती है। हाँ, अगर उसका कोई स्टोन निकल जाता है, उसका डायमंड निकल जाता है, तो भले ही वो सही तरह से चीज चल रही होती है लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता में कमी। लेकिन भगवान तो परिपूर्ण है ना, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उसमें से कोई अंश निकल जाता है। निकल मतलब ये पृथक है, ऐसा नहीं है कि वो उसी के, जिस तरह से हमारी उंगली निकल जाएगी तो हम अच्छे नहीं लगेंगे ना। लेकिन हम कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे नाखून का ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या होता है, वो अगर कट जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो लगा हुआ होता है तो अच्छा है, मतलब उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर निकाल दिया जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। पृथक पृथक अंश है और मूल अंशों की के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, बंदी ग्रह की अध्यक्षता मतलब जैसे एक जेल होता है और जेल का जो जेलर होता है ना वो कौन है, दुर्गा देवी। जिस तरह ये संसार जो है वो बंदी ग्रह है, यानी एक जेल की तरह है, सारे यहाँ पर अपराधी हैं और उस जेल की जेलर कौन है, दुर्गा देवी। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे विशृंखलित अंशों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तो वह भगवत धाम को वापस जाना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागती है। अब ये भौतिक प्रकृति में दुर्गा देवी क्या काम करती है, जैसे जेलर जो है वो जेल में क्या काम करता है, जितने भी बंदी आते हैं उनको यातनाएं देता है ना, किसी तरह से उनको ऐसी धुलाई कराता है, पिटाई कराता है कि उसको ये सबक सीख जाए कि आइंदा ऐसा अपराध नहीं करूंगा, अब खाली मुझे इस जेल से छुट्टी मिल जाए बस, ताकि मैं वापस कभी भी इस जेल में वापस नहीं आऊं। उसी तरह से संसार में दुर्गा देवी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, समस्त जीवों को दुख देती है, कष्ट देती है, ताकि सारे जीव ये सबक सीख जाएं कि हम इस भौतिक जगत में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत धाम को वापस जाना चाहते हैं। अब बोलते हैं अब हमें यहाँ से मुक्ति चाहिए और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागती है। फिर वो सोचते हैं कि अब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, यह ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। तथा तो यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा यानी वास्तविक जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, मैं इस संसार में क्यों हूँ और मुझे क्यों त्रियताप भुगतने पड़ रहे हैं। मुख्यतः यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति के सफलीभूत होती है, यानी कि पहले ज्ञान प्राप्त होता है, फिर भौतिक वस्तुओं से वैराग्य और भगवत बाद में भगवत भक्ति में वो आके पूर्ण होती है। ज्ञान का अर्थ है परब्रह्म विषयक प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। हर एक वस्तु, हमें पता चले कि हर एक वस्तु का कारण स्वरूप भगवान है। और उसके बाद वैराग्य का अर्थ है भौतिकता से विरक्ति, यानी भौतिक सारी वस्तुओं से, व्यक्तियों से विरक्ति। हमें पता चल जाता है कि हम आत्मा है, भौतिक संसार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। और भक्ति अभ्यास द्वारा जीव की मूल स्थिति की पुनर्प्राप्ति होती है। जीव की मूल स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जब हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो ऐसे करते 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 समस्त अनर्थ जो है वो समाप्त हो जाते हैं और हम पुनः अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो सफल जीव ब्रह्म के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी योगी तथा भक्त कहलाते हैं। अब ब्रह्म में प्रवेश करने वाले जो ब्रह्म के राज्य में, वो बहुत सफल जो योगी हो जाते हैं वो ज्ञानी योगी या भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों को जाते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि अगर आप ज्ञानी बनोगे या योगी बनोगे तो मत सोचना कि हमें भगवान के लोक में जाना पड़ेगा, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, लेकिन जो भक्त होंगे वैकुंठ में चले जाएंगे और इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है। और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास सखा माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करते रहते हैं। अब वैकुंठ लोक में भगवान का नारायण स्वरूप होता है और भगवान के साथ जीव जो है दास सखा पिता माता तथा प्रेमी के रूप में भगवान के प्रेम भक्ति करते रहते हैं। वहाँ मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता में रहकर जीव का आनंद उठाते हैं। वहाँ पर जीवन का परम आनंद प्राप्त होता है क्योंकि पूरी स्वतंत्रता होती है। आप जिस प्रकार से चाहते हो भगवान से प्रेम कर सकते हो, आपको कोई भी बाधा नहीं होती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं, न तद बासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। कि मेरा जो ये गौलोक वृंदावन धाम है वो क्या है, वो उसको सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रदीप्त है, वो स्वयं प्रकाशमान है। तो उसमें से बहुत सारी जो है ना रेस निकलती है, बहुत सारी ज्योति निकलती है, पर ब्रह्म ज्योति। और वैकुंठ लोकों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है, जो उनसे किरण निकलती है ना, जैसे सूर्य की किरण होती है उसी तरह से जो वैकुंठ लोक है वो भी इतना ज्यादा प्रकाशमान है कि उसकी भी किरणें निकलती हैं और उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का प्रचंड अंश मात्र है। ये भौतिक जगत क्या है, इस ब्रह्म ज्योति का प्रचंड अंश है, यानी उसी के अंदर ये जो भौतिक जगत भी आ जाता है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का ब्रह्म है। अब क्योंकि ये जो ब्रह्म ज्योति है उसका अनंत प्रसार है, बहुत बहुत दूर तक ये रोशनी जा रही होती है, तो फिर ये भौतिक जगत में भी आ रही होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आवरण क्षणिक है और ये जो है अतएव यह एक प्रकार का ब्रह्म है, वास्तविक तो लोक नहीं है ना, ये तो इसकी रोशनी है सिर्फ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म देव एक वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए हैं, जहाँ पर भगवान अपने पार्थ साथी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। एक ऐसा लोक जहाँ पर भगवान पार्थसारथी के स्वरूप में है और बद्ध जीव जो है वो सदैव उनकी सेवा करते थे। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बने रहते हैं वह भीष्म देव में प्रकट है। भीष्म देव भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी भी नहीं भूले और जिस समय भीष्म देव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भीष्म देव क्योंकि भगवान के पार्थसारथी स्वरूप से प्रेम करते थे और कभी एक क्षण के लिए भी उस स्वरूप को नहीं भूलते थे तो प्रयाण के समय क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके समक्ष थे तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यही है कि जब हमारी मृत्यु हो उस समय हमें भगवत दर्शन हो, हमारी स्मृति मति जो है वो भगवान में लगी हुई हो, हृदय मन भगवान में लगा हुआ हो, वाणी में भगवान के गुण गा रही हो, इससे अच्छा और कोई जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं हो सकता। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 45, देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञा कात्तेतु पुष्पवृष्टय तत्र दुन्दु भयो निधाय देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञा कात्तेतु पुष्टविष्टया तत्र दुन्दु भयो निदय देव मानव वादिता शशंसु साधवो राज्ञा कात्तेतु पुष्पविष्टया। अभी आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले तो वो सारे साइलेंस हो गए, सारे ऋषि मुनि जो है वो भीष्म पितामह को भगवान में या ब्रह्म में लीन होता हुआ देखकर वो सब शांत हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तत्र दुन्दु भयो निदय, तत्र उसके बाद क्या हुआ, तत्र यानी तत्पश्चात दुन्दु भयो, जोर जोर से नगारे बजने लगे और नेदु यानी बजने लगे नगारे बैंड बाजे और दुन्दु भैया जो होते ना देव, हाँ यहाँ पर बताया देव मानव वादिता, देव मतलब अन्य लोगों के देवता, मानव यानी सारे देशों के मनुष्य, जितने भी देवता थे वो और सारे मनुष्य जो है वो मिलकर दुंदुबियां बजाने लगे, बाजे बजाने लगे। क्योंकि बहुत ही प्रशंसा की बात है कि एक भक्त आज अपने भगवान के साथ मिलने गया है, तो सारे देवता बहुत प्रसन्न हो रहे थे और सारे मनुष्य जो शुद्ध मनुष्य थे वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे और शेषंसु का मतलब होता है प्रशंसा की, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, उनकी मृत्यु की प्रशंसा कर रहे थे, उनके जीवन की प्रशंसा कर रहे थे कि कितना सुंदर इसका जीवन था और मृत्यु तो जीवन से करोड़ गुना ज्यादा सुंदर थी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उन्होंने दम तोड़ा है। तो वो सब प्रशंसा कर रहे थे, साधवो ईमानदार राज्ञाम जो भी राजा थे वहां पर वो सब, और क्या कर रहे थे, खात पेतु पुष्प वृष्टय, खात पेत यानी आकाश से गिरने लगी क्या, पुष्प वृष्टय पुष्पों की वर्षा, सारे देवता बाजे बजा रहे थे और पुष्प वर्षा रहे थे, सब लोग सारे राजा जो थे वहां पर जो ईमानदार राजा खड़े थे वो सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे, जय हो भीष्म पितामह की, जय हो पार्थसारथी की, जय हो, सब ऐसे उनकी प्रशंसा कर रहे थे, दुंदुभियां बजा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, देवता जो हैं वो पुष्पों से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे क्योंकि बहुत ही परम पवित्र जीवन था भीष्म पितामह का। अब कभी भी देवता इस प्रकार पुष्पों की वर्षा नहीं कराते। वैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भी समझो कलयुग लगभग आने वाला है, द्वापर के अंत की लीला है, उस समय तक मनुष्य ऐसे कार्य करते थे कि देवता भी आकाश में उनको देखने के लिए आते थे कि कितना सुंदर ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी कभी भी देवता किसी पर भी पुष्पों की वर्षा नहीं करते, क्योंकि अब तो सारे लोग ज्यादातर नालायक हो गए। ज्यादातर लोग जो हैं वो भक्ति भी नहीं करते, उनका हृदय भी शुद्ध नहीं होता, ध्यान भी नहीं लगता भगवान में, और अपने जो उनके नियत कर्म है ना वो भी अच्छे तरीके से नहीं करते। लेकिन पहले ऐसा होता था, मतलब देखा जाता था, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि आसमान से अक्सर, अभी हम भागवतम आगे पढ़ेंगे ना, बहुत सारे दफा ऐसा हम पढ़ेंगे कि आसमान से जो देवता लोग है ना वो पुष्पों की वर्षा करते रहते थे। जब मेरी मम्मी बचपन में भागवतम पढ़ती थी ना तो हमेशा ऐसे कहती थी, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। तो मैं इसे बोलती, देवताओं को अपने लोक में और कोई काम नहीं था, खाली है ना आकाश पे खड़े होकर मनुष्यों की कार्य देखते थे क्या? लेकिन वास्तव में जब भगवान लीला करने आते हैं तो देवता को वहां पर स्वर्ग में आनंद नहीं आता, भगवान की लीलाएं यहाँ पर देखते हैं संसार में और उनसे आनंदित होते हैं। और जब भी भगवान कोई भी काम करते हैं ना, जैसे अभी कृष्ण का जन्म होगा, जब हम सुनेंगे तो कृष्ण किसी राक्षस को मारेंगे या कभी पूतना को मारेंगे, कालिया पर नृत्य करेंगे, जो भी करेंगे कृष्ण कोई भी लीला करेंगे तो देवता जो हैं वो पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो वास्तव में ये देवता सदैव इस ताक में रहते हैं कि कभी भगवान की लीलाएं हों, भगवान कोई कार्य करें तो हमेशा भगवान पर ही उनकी नजर टिकी होती है। आगे अनुवाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और ईमानदार राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भीष्म देव का आदर मनुष्य तथा देवता दोनों करते थे। मनुष्य तो पृथ्वी पर भू एवं भूलोक में रहते हैं, लेकिन देवता स्वलोक यानी स्वर्ग में रहते हैं। और वे सभी जानते हैं कि भीष्मदेव महान योद्धा तथा भगवान के भक्त हैं। मनुष्य रूप में होकर भी समाज या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा नारद तथा शिव के तुल्य थे। भले ही वो मनुष्य थे, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, ब्रह्मा नारद शिव के तुल्य थे। और आध्यात्मिक सिद्धि मिलने पर ही देवताओं के तुल्य योग्यता संभव है। अब उनकी क्योंकि आध्यात्मिक इतनी सिद्धि थी, वो अपने कार्य अपने अपने सारे नित्य कर्म और सारे जितने भी उनके ऊपर कर्तव्य थे वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाए, तभी उन्हें ऐसी योग्यता प्राप्त हुई थी। इस तरह भीष्मदेव समस्त ब्रह्मांडों में विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्म विधियों से की जाती थी। जब सुदूर लोक को भीष्म के निधन की सूचना भेज दी गई तो उच्च लोक के निवासियों ने तथा पृथ्वी के वासियों ने द्विंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। यानी कि अब जब इतने महान थे भीष्म पितामह, उनकी ख्याति हर लोक में थी, तो पहले जमाने में क्या होता था, सूक्ष्म विधि होती थी, मतलब मन से किसी को बता दिया जाता था या फिर किसी तरह से उनको बताया जाता था कि यहाँ पर एक महान वैष्णव जो है वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं, इनके अंतिम दर्शन पृथ्वी पर अगर करने किसी को तो वो आ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जमा हो गए थे, भले ही कोई यहाँ पर न्यूज कास्टर्स नहीं होते थे, न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, लेकिन एक विधि होती थी आने जाने की। तो इस तरह से सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, दूसरे दूसरे लोकों के भी लोग यहाँ पर आए थे, उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के वासियों ने द्विंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की थी। दोनों पृथ्वी के लोग और स्वर्ग के लोग के उच्च लोग के प्राणी भी उनका सम्मान कर रहे थे। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता की का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव के फूलों से सजाने से नहीं करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव दूर हो चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन रहा था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा लाल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताए यहाँ पर कि ऐसा नहीं है जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और डेड बॉडी पर हम लोग है ना फूल डालते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देवता लोग जो उनके उनके ऊपर जो वर्षा कर रहे हैं वो समझो उनकी वास्तविक जो उनका स्वरूप है उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप था वो आध्यात्मिक चिंतन में लीन हो गया था। उनकी वाणी, उनका मन, उनके सारे जैसे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सारी भगवान में लीन हो गई थी, और जब भगवान में लीन हो गई थी तो वो पूरे के पूरे आध्यात्मिक बन गए थे। अब जिस प्रकार से लोहे को जब हम अग्नि में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद लोहा इतना ज्यादा लाल हो जाता है, फिर वो भी अग्नि की तरह कार्य करता है। उसी तरह जब आध्यात्मिक में हमारी चेतना लीन हो जाती है, हमारी इंद्रियां मन कर्म वाचन से अध्यात्म यानी भगवान में लीन हो जाते हैं, तो फिर कुछ भौतिक नहीं रहता। अतएव पूर्णतया स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता, उनका शरीर भी भौतिक नहीं होता है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्म देव के सम्मान तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भीष्म देव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी भी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए। यानी कि जिस तरह से ऐसे कृत्रिम साधन नहीं है ये भीष्म देव का, जो देवताओं ने सम्मान किया था, बड़े बड़े राजाओं ने किया था, इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कोई भी है ना किसी की भी डेथ हो जाए तो हमें इस तरह से करें, नकल नहीं करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती फिर बोलते हैं आज इसका जयंती समारोह है, आज इसका अपीयरेंस डे है, अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे। सामान्य लोगों की भी मतलब बर्थडे और डेथ डे ये सब मनाया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों न हो जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती यानी अपीयरेंस डे तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। उनका भगवान का होता है कि आज कृष्ण जयंती है, आज रामनवमी है, आज जन्माष्टमी है, कोई भी नरसिंहदेव, तो भगवान के जो आने के आविर्भाव हैं उन दिनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और भीष्म देव अपने कार्यकलापों के कारण अनोखे थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अनोखा था। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भीष्म देव ने अपने जीवन में एकदम अनोखा उनका जीवन था, ऐसा किसी भी भीष्म देव के जैसा और किसी भी राजपुत्र का या राजा का जीवन नहीं था। मतलब वो अखंड ब्रह्मचारी थे, राज पूरा राज्य उनका था, लेकिन वो राज्य को नहीं भोगते थे, ना ही कोई राज्य की सुविधा लेते थे, वो राज्य में रहते हुए भी सन्यासी थे। तो उनका जीवन भी सन्यास, उन्होंने अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए अपने जीवन के हर सुख का बलिदान दे दिया। कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी राज्य नहीं भोगूंगा, सब कुछ जो मतलब एक क्षण में अपने जीवन की हर खुशी को परित्याग कर दिया। इतना जीवन उनका अनोखा था और उसके बाद उनकी मृत्यु भी इतनी अनोखी थी कि देवता, पहले तो मृत्यु के समय भगवान स्वयं साक्षात उनके समक्ष खड़े थे और उसके उपरांत देवता जो हैं वो उनकी मृत्यु पर फूल बरसा रहे थे और बाजे बजा रहे थे, सब प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक महान व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूँ। हरे कृष्ण।